ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಪ್ ಸಭಿ ಮೀಠೆ ಬಾಬಾ ಕೆ ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಬಚ್ಚೆ ಬಾಪ್ ಕಿ ಪಹಲಿ ಪಹಲಿ ಆಜ್ಞಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೆ ಅಮೃತ ಪೇಲೆ ಉಠಕರ್ ಮುಝ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ ಕರೋ. ಯೇ ಪಹಲಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಹೈ. ತೋ ಬಾಬಾ ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಪರ್ ಇತನಾ ಜೋರ್ ಕ್ಯೋ ದೇತಾ ಹೈ? ಏಕ್ ತರಫ ಬಾಬಾ ಕಹತಾ ಹೈ ಚಲ್ತೆ ಫಿರ್ತೆ ಉಠ್ತೆ ಬೈಠ್ತೆ ಮುಝೆ ಯಾದ ಕರೋ, ಔರ್ ದೂಸರಿ ತರಫ ಯೆ ಭಿ ಕಹತಾ ಹೈ ಬಚ್ಚೆ ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಜರೂರ್ ಬಾಪ್ ಕೋ ಯಾದ ಕರೋ. ತೋ ಅಮೃತ ವೇಲೆ ಬಾಪ್ ಕೋ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ಸೆ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಸೆ ಯಾದ ಕರೋ. ವೋ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ ಯಾದ, ಯೋಗ, ತಪಸ್ಯಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಮಣ, ವಿಶ್ವ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾನ. ಯಾದ, ಯೋಗ, ತಪಸ್ಯಾ ಔರ್ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಮಣ, ಇನ್ ಚಾರೋ ಮೇ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಸ್ವಯಂ ಕೋ ಸ್ಥಿತ ರಖೋ. ಚಾರೋ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಚಾರೋ ಸೆ ಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾ ಹೈ. ಜೋ ಚಾರೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹೈ. ಯಾದ ಸೆ ಆತ್ಮಾ ಕೋ ಸುಖ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಗಾಯನ ಹೈ ಸುಮೀರ್ ಸುಮೀರ್ ಸುಖ ಪಾವೋ ಕಲಾ ಕಲೇಶ ಮಿಟೆ ತನಕಾ. ಯಾದ ಸೆ ಸುಖ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ, ಯೋಗ ಸೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಹೋತೆ ಹೈ. ತಪಸ್ಯಾ ಸೆ ರಾಜ್ಯ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಬಾಪ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾನೆ ಸೆ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಸ್ ಬಂತಿ ಜಾತಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ ಸಹಜ ಬನ್ ಜಾತೆ. ತೋ ಬಾಪ್ ಕಿ ಯಾದ ಕಾ ಆಧಾರ ಹೈ. ಆಪ್ ಕೋ ಬಾಪ್ ಕಿ ಯಾದ ಆತಿ ರಹೆ ಉಸ್ಕಾ ಆಧಾರ ಹೈ ಬಾಪ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಾರ ಮೇ ಔರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೇ. ಸಾಕಾರ ಮೇ ಮತಲಬ್ ಆಪ್ ಹರ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೆ ಹುಯೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾದ ರಹೆ उस संबंध के आधार से उस रूप से याद रहे। प्रैक्टिकल में, साकार में याद से जो कहा गया है सुख मिलता है, तो संबंध से सुख है, गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो भगवान की कृपा से डबल सुख मिलता है, एक तो इस समय भगवान के साथ जो आत्मा को संबंध का सुख मिलता है, जिस सुख का गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपिकाओं से पूछो। यह सुख सतयुग में नहीं मिलेगा। अति इंद्रिय सुख केवल संगम युग पर गोप गोपियों को ही मिलता है। तो भगवान के साथ सर्व संबंध रखकर भगवान से संबंधों का सुख लो। अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने की विधि है, याद की भी तीन स्टेज है। एक है याद करना पड़ता है, एक है याद आती है, एक है याद सताती है। आप देखो हम किस स्थिति में हैं, याद करना पड़ता है या बाबा की याद आती है या सताती है। सताने का अर्थ है उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे, उसको सताना कहा जाता है। जैसे एक कोई आसुक मासुक होता है, बाबा उदाहरण है देता है, कई उदाहरण देता है, हीर रांझा का देता है, लैला मजनू का देता है, उनको उनकी सूरत के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। खाए तो भी सामने, चले तो भी सामने। ऐसे आप कुछ भी करो लेकिन बाप दादा सामने हाजिर हो, मीठा बाबा सामने हाजिर हो। तो याद सताने वाली याद चाहिए। अभी याद पड़ती है या आती है, करना पड़ता है, ये स्टेज ब्राह्मणों की नहीं चाहिए। याद करना पड़ता है माना मजबूरी है, लेकिन बाबा के ज्ञान में मजबूरी नहीं है, संबंध का प्यार है, प्राप्ति है, मजबूरी नहीं है। याद आती है माना आती है तो जाती भी है, टूटती है याद, लेकिन नहीं, सताने वाली याद चाहिए। जिसको भक्तों ने कहा, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। बाबा के बच्चे कहते हैं, जिधर देखता हूं चलता हूं बैठता हूं बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। और दूसरा है, योग से विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश करने के लिए बाबा कहता है, बच्चे अपन को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। इसको योग कहते, आत्मा समझकर। आप लोग पहले योग में बैठे थे, जो भी पहले आए थे, जितनी देर बैठे थे, आपका कितना परसेंट विकर्म विनाश हुआ है ये आपको कुछ पता पड़ा कि हमारे विक्रम विनाश हुए हैं या नहीं? या हमारा काम है सिर्फ योग लगाना, बाकी बाबा जाने? बाबा जाने वो तो राइट है, लेकिन आप भी जानो। क्यों? विकर्म आपने किए हैं, खत्म आपको करना है, तो आपको भी जानना जरूरी है कि इतनी देर हमने योग लगाया, कितना हमारा विकर्म विनाश हुआ, क्या अनुभव होगा। जो आप समझोगे मेरा विकर्म विनाश हुआ है, अच्छा, योग से आपके विकर्म विनाश हुए उसकी निशानी है कि जब आप योग पूरा करेंगे, जितनी देर भी बैठे थे, तो आपके मन में एक ही संकल्प आएगा कि और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें, और बाबा को याद करें। ना बोलने का मन कहेगा, ना इधर उधर देखने का मन कहेगा, बस एक ही संकल्प आएगा, और बाबा को याद करे। तो जितना मन की खैच बाबा की तरफ हो रही है, जितना ज्यादा, उतना आपके विकर्म ज्यादा विनाश हुए हैं। जैसे बाबा मुरली में कहता है कि जितना लोहे से जंक उतरता है उतना चुंबक खींचता है, तो जितना आत्मा से जंक उतरेगी उतना चुंबक बाबा खींचेगा, खिंचाव होगी, ऊपर की खिंचाव होगी। तो योग से विकर्म विनाश होते, आपका योग लगा रहे उसकी भी दो विधि है। एक, अंतर्मुखता की गुफा, अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास करो। जैसे दुनिया में योगी लोग गुफा में बैठ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, वो एकांत में बैठे हैं, ऐसे आप अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। आपके लिए दुनिया है ही नहीं, इतना आप अंतर्मुखी बन जाओ। एक अंतर्मुखता की गुफा, दूसरा अशरीरी होने का अभ्यास। आत्मक स्वरूप में टिकने का अभ्यास, आत्मक स्वरूप में वही टिक पाएगा जिसकी आत्मा की चारों स्थितियां हैं, उन चारों स्थितियों का अभ्यास करता होगा। वो चार स्थिति है, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही, अशरीरी। ये आत्मा की चार स्थितियां हैं, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी। इन चारों की चार प्रकार से प्रैक्टिस है, तो जो ये चारों प्रैक्टिस करता होगा वही निरंतर आत्मक स्वरूप में टिक पाएगा और उसका योग निरंतर लगा रहेगा। तीसरी बात है तपस्या। हमारा सबका लक्ष्य है विश्व का मालिक बनना, पूरे विश्व पर राज्य करना। तो पूरे विश्व पर राज्य तो आप तब कर सकेंगे जब पूरे विश्व की सर्व आत्माओं को आप कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति कराएंगे। तब जब तक आप से उनको कुछ मिलेगा नहीं, वो आपको अपना महाराजा कैसे मानेंगे। तो अभी संगम युग पर आप या तो मास्टर ब्रह्मा बनकर कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में बैठकर, क्योंकि तपस्वी तपस्या झाड़ के नीचे करते हैं, ऋषि मुनि कुटिया बनाकर जंगलों में रहते हैं, लेकिन तपस्वी तपस्या झाड़ के नीचे करते हैं। तो आप भी कल्प वृक्ष के झाड़ के नीचे मास्टर ब्रह्मा बनकर पूरी सृष्टि की सर्व आत्माओं की प्रेम से, प्यार से, स्नेह से, सुख से किरणों के द्वारा पालना करो। आपकी ये किरणें फैलती हुई विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंचे, या कल्प वृक्ष के ऊपर आप पूरे वृक्ष को सकाश दो, सर्च लाइट दो ऊंची स्टेज से, जिससे सारे विश्व के सब निगेटिव वाइब्रेशंस जल के खत्म हो जाए, प्योर बन जाए। इस प्रकार की तपस्या करो। तपस्या करने के लिए दो बात की आवश्यकता है, एक उपराम स्थिति, दूसरा सच्चे दिल की लगन। भगवान के साथ सच्चे दिल का प्यार हो। प्यार तो सबका भगवान के साथ है, लेकिन सच्चे दिल का प्यार, तो सच्चे दिल का प्यार और उपराम स्थिति, ये आपको तपस्या में मदद देगी। वैसे भी कहा गया है, त्याग तपस्या, वैराग्य त्याग फिर तपस्या, पहले वैराग्य। वैराग्य का आधार है ज्ञान, समझ। उस वैराग्य, जब वैराग्य आता है तब त्याग स्वतः हो जाता है। जैसे लौकिक दुनिया में कोई घर बार छोड़ता है तो उसको पहले वैराग्य आता है, फिर घर बार छोड़ करके जाते हैं, या जो भी चीज छोड़ना होता है पहले उससे वैराग्य आता है। तो वैराग्य से त्याग और फिर त्याग से तपस्या स्वतः हो जाती है। त्याग का अर्थ ही है जो चीज तपस्या में विघ्न डालती हो उसका त्याग। त्याग का मतलब छोड़ना नहीं, त्याग का मतलब है मन बुद्धि से भूलना, क्योंकि तपस्या मन बुद्धि से होती है, शरीर तो मात्र साधन है। چوتھا ہے باپ کے ساتھ بس کا چکر لگاؤ. بس کا چکر, بس کا بھرمن, بس کی سرو آتماؤں کی دیکھ ریکھ کرنا, سب کی منو کامنا پوری کرنا, بھکتوں کو ساکشاتکار کرانا, دکھیوں کا دکھ دور کرنا, کسی کا بگڑا ہوا کام بنانا, کسی کو پریرنا دینا, یہ سب کام امرت بیلے باپ کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کرو. بابا جوتربندو, میں آتما بھی جوتربندو. دونوں ساتھ ساتھ چل رہے, پورے وشو کا چکر لگاؤ. بہت سکھدائی استھتی ہے, بہت تھوڑی دیر میں بہت جمع ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے دو چیز چاہیے. شریر سے ڈیٹیچ ہونے کی پریکٹس, یہ شریر الگ ہے, میں آتما الگ ہوں, دونوں الگ کی انبھوتی ہو. اور دوسرا اس کے لیے اپرام استھتی ہو. اپرام استھتی, اپرام استھتی کا ایگزامپل بابا نے گلاب کے پھول سے دیا تھا, کیونکہ گلاب کا پھول ایسا پھول ہے کہ اس پھول کی تین وشیشتا ہے جو اور کسی بھی پھول میں نہیں ہے. جانتے ہیں کون سی تین وشیشتا ہے جو اور کسی پھول میں نہیں ہے؟ اچھا, وہ تین وشیشتا ہے, آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب گلاب کا پھول پورا کھل کے کمپلیٹ تیار ہو جاتا ہے تو اس کو ذرا سا ایسے کرو, ساری پتیاں جھڑ جاتی, سب پتی جھڑ جائے گی پھول کی, اور کسی بھی پھول کی پتی جھڑتی نہیں, سوکھ جاتی ہے, سوکھ کے گرے گی, لیکن گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں سب گر جاتی ہرے میں ہی. ارتھات ایسی آتما سب کے ساتھ رہتے ہوئے, سیوا کرتے ہوئے, سیوا کا پارٹ پورا ہوا اور نیاری کوئی ہے ہی نہیں. ایک وشیشتا, दूसरी विशेषता गुलाब के फूल की है कि गुलाब के फूल पर कभी भंवरा नहीं बैठता है और सब फूलों पर बैठेंगे कीड़े लेकिन गुलाब के फूल पर नहीं बैठता है। अर्थात वो सब कुछ कर्म करते हुए सबके साथ रहते हुए मेरा कोई नहीं ना मैं किसी का और मेरा सब कोई सबका मैं, अर्थात मेरा विशेष कोई नहीं, विशेष एक मीठा बाप दादा, बाकी सब मेरे हैं, हम सबके हैं। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, हम सबका मीठा बाबा है। तीसरी विशेषता गुलाब के फूल की कि जब पंखड़ियां झड़ जाती हैं तो बीच में सिर्फ क्या बचता है, बूर बचता है इतना, अर्थात सेवा करते हुए सबके साथ रहते हुए एकदम उपराम आत्मक स्थिति में सदा स्थित, बूर अर्थात सो स्वरूप में सदा स्थित है, सबके साथ लेकिन सबसे अलग है। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हो, हलवा बनाते हो, पहले वो बर्तन में चिपकता है, छुड़ाते हो, चिपकता है, छुड़ाते हो, कढ़ाई में चिपकता है, लेकिन जब पक के तैयार हो जाता है तो बर्तन को छोड़ देता है, हाय बर्तन में लेकिन बर्तन से अलग है। इसको कहा जाता है उपराम, रहना परिवार में, समाज में सब कुछ करना भी है लेकिन तन यहां है, मन बाप दादा के पास है, बुद्धि बाप दादा के पास है, अपने वतन में है। एक ने फिर हंसी में पूछा था कि आजकल तो ऐसा बर्तन निकला है जो चिपकता ही नहीं है, जिसमें क्या पता नहीं कौन सा आपको कहते हैं, उसमें चिपकता नहीं है, तो उसका बहुत अच्छा बाबा ने जवाब दिया था कि ये जो एग्जाम्पल देते हैं बर्तन में चिपकने का, ये पहले जमाने का एग्जाम्पल है। अब जो है, अब का है कि इस समय आपको इतना ज्ञान योग स्पष्ट हो गया है कि अब तो चिपकने की मार्जिन ही नहीं है। पहले मार्जिन थी क्योंकि कोई सामने कुछ था नहीं, अब तो कोई मार्जिन ही नहीं है क्योंकि सामने दादियों को देखो, बड़े भाइयों को देखो, सैंपल के रूप से तैयार है, अव्यक्त रूप से अपना बाप दादा के दादियां भी सैंपल रूप से सामने हैं, तो अब चिपकने का समय ही नहीं है, अब तो है ही है सीधा, बस मैं आत्मा और मेरा बाप दादा। तो ये अमृत वेले चार में से किसी न किसी में स्वयं को जरूर स्थित स्थित रखो, चाहे याद करो और चाहे तो इससे ऊंची स्टेज और योग करो और चाहे तो तपस्या करो और चाहे बाबा के साथ विश्व भ्रमण करो, लेकिन इन चारों में किसी न किसी में स्वयं को रखो। तो अमृत पहले योग से सात प्रकार का फायदा है जो और किसी समय योग में नहीं है, उसी समय है सिर्फ। योग तो कभी करो, फायदा ही फायदा है, लेकिन इस सात प्रकार का विशेष फायदा आपको अमृत वेले योग में मिलता है। पहला है वायुमंडल का सहयोग। सतो प्रधान वायुमंडल होता है, सतो प्रधान वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, बताएंगे अभी। दूसरा है आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है, तो फ्रेश होने से फ्रेश माइंड से भगवान को याद करना सहज है। तीसरी बात, अमृत वेले कोई कार्य व्यवहार नहीं होता है, आत्मा एकदम निसंकल्प होकर बाप के पास बैठ सकती है, क्योंकि और समय तो कार्य व्यवहार है, संकल्प नीचे खींच लेता है, सुबह फ्री है। चौथा फायदा है अमृत वेले उठकर याद करने से भगवान की आज्ञा का फल, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद। पांचवी बात, जो अमृत वेले उठकर बाप को याद करते हैं, अभी तक सुबह का योग मिस नहीं किया है, वो सतयुग में 111 में अवश्य आएंगे, 111 में आना, भले प्रजा ही बने, ये भी कोई कम भाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 111 में आएगा वही इन आंखों से श्री कृष्ण को देख सकेगा, बाकी और कोई भी श्री कृष्ण को देख नहीं सकेगा। दूसरे जन्म में श्री कृष्ण का नाम रूप बदल जाएगा। तो 111 में आना कम भाग्य की बात नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मुरली की हेडिंग थी लक्की एंड लवली। बाबा ने कहा था अमृत वेले के महत्व पर, जो यहां जितनी देर से उठता है सुबह 4:05, 10 मिनट जो भी योग, जो जितनी देर से उठता है वो सतयुग में उतनी देर से आएगा। जो यहां जितना घंटा लेट उठता है, 4:00 के बाद 4:45 के बाद उठते हैं, जो यहाँ जितना घंटा लेट उठता है सतयुग में उसका उतना जन्म कम है, यहाँ घंटा वहाँ जन्म। देखो अमृत वेले योग का महत्व। और जो अमृत वेले 4 से 4:45 उठता ही नहीं है उसको क्या कहा होगा बाबा ने। वो स्वप्न भी न देखे कि हम सतयुग में आएंगे भी। इतना अमृत पहले का महत्व है। 4 से 4:45 का योग, भगवान का बनाया हुआ नियम है। अच्छा, छठी बात है, अमृत वेले ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से अपने भाग्य की लंबी रेखा खिंचवा सकते हो। अमृत वेले शिव बाप से सर्व किरणों की पालना ले सकते हो। अमृत वेले ब्रह्मा मां से विशेष या इष्टा स्नेह आप प्राप्त कर सकते हो, तो क्लियर करेंगे। और शिव बाप से अमृत वेले अपने किए हुए सभी पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय शिव बाप भोलेनाथ के रूप में होते हैं, ऑफिशियल नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, अपने सभी किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। भगवान भोलेनाथ के रूप में है। तो ये 7 प्राप्तियां हैं। पहली बात है कि अमृत वेले वायुमंडल शुद्ध सतो प्रधान होता है। वायुमंडल का प्रभाव मन के ऊपर अवश्य पड़ता है। अब वो अलग बात है आप मन को कहां लगाते हो, लेकिन वायुमंडल प्रभाव डालता है। जैसे आप देखो, चोर होता है, सारी रात चोरी करे, दिन में भी चोरी करता है, लेकिन सुबह 4 बजे कभी चोरी नहीं करता है। इतना वायुमंडल का प्रभाव है। दूसरी बात, कोई बीमार हो उसको सारी रात नींद नहीं आई हो, तड़फता रहा हो, कोई दवाई नहीं काम कर रही हो, लेकिन सुबह 4 बजे चाहे थोड़ी देर के लिए आए, नींद अवश्य आ जाएगी, नींद आ जाती है। वायुमंडल का प्रभाव है, शुद्ध सतो प्रधान है। अमृत वेले आप जो शाम को 2-2.5 घंटे में काम करोगे, सुबह 1/2 घंटे में हो जाएगा। वायुमंडल शुद्ध है, सतो प्रधान है। आप सोचो जब वायुमंडल सतो प्रधान है, उसका प्रभाव चोर के ऊपर पड़ सकता है, इस शरीर के ऊपर पड़ सकता है, तो क्या अगर आत्मा उस समय एक दृढ़ता के साथ बाप को याद करने का संकल्प करे तो क्या वायुमंडल का सहयोग नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन उस समय हम अलबेले हो जाते हैं। अगर योग नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन नहीं, उस समय अगर थोड़ी भी दृढ़ता ले लो, देखो आपका योग लग जाएगा। एक तो बाप की मदद मिलेगी, दूसरा वायुमंडल का सहयोग मिलेगा। दूसरी बात, आत्मा सारी रात नींद करके उठी है, फ्रेश है। फ्रेश तब होगी जब रात को डीप नींद आई होगी, उल्टा पुल्टा स्वप्न नहीं आया होगा, ख्यालात नहीं आए होंगे, तो सुबह उठते ही मन फ्रेश होगा। अगर उल्टे सुलटे स्वप्न आए होंगे तो उठते ही मन फ्रेश नहीं होगा, या गहरी नींद नहीं आई होगी तो भी मन फ्रेश नहीं होगा। अब इन दोनों का आधार है, उल्टे पुल्टे स्वप्न ना आए, नींद भी गहरी आए। एक कोई बीमारी होती है, थोड़ी बहुत इलाज कराना पड़ेगा, वो अलग चीज है। नेचुरल रोज की दिनचर्या में उसका आधार है, रात को सोने के पहले सारे दिन का चार्ट बाबा को बता करके, अगले दिन की प्रेरणा ले करके फिर सो। अगर चार्ट नहीं देते हो तो बाबा ने एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे आप अपने घर की सफाई करो, पूरा घर साफ करके कहीं कोने में कीचड़ा रख दो, जलाओ नहीं, कहीं बाहर फेंको नहीं, घर के किसी कोने में रख दो, तो कीचड़े से क्या पैदा होगा? मच्छर किसको काटेंगे? आपको काटेंगे। पूरा घर साफ किया लेकिन कीचड़ा जलाया नहीं, ऐसे सारा दिन भल अटेंशन दिया लेकिन अगर चार्ट नहीं दिया, कुछ न कुछ भूल गलती होती है, तो थोड़ा सा जो कीचड़ा रह जाता है वो स्वप्न में वार करता है, वही बात स्वप्न में आती है, माथा भारी हो जाता है। तो बाबा को चार्ट देकर और बाबा की याद में सो जाओ तो नींद भी गहरी आएगी, स्वप्न भी आएंगे तो स्वर्ग के आएंगे, देवी देवताओं के आएंगे, अच्छे अच्छे स्वप्न आएंगे जो मन को फ्रेश रखेंगे। और उठते ही टाइम पर आंख भी खुल जाएगी, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करो और बाबा को याद करो। अच्छा, ओम शांति।